आज सानवी ने सोचा कि वो अपनी शेफ की क्लास मिस कर दे, क्योंकि शाम को उसे एक पार्टी में जाना था। वैसे भी उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हुई थी और जिस इंस्टीट्यूट से सीखी थी वहीं से उसे फोन आया था। इस बार उसे वहां से पैसे भी मिलने वाले थे। सानवी उस इंस्टीट्यूट के सर को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया था। जब भी सानवी को मदद की जरूरत होती, वे लोग उसके साथ खड़े रहते। इसलिए उसने तय किया कि वो जल्दी ही आर्यन राजवंश के घर चली जाए। तकरीबन 10 बजे तक वो वहां पहुंच भी गई। सानवी ने सोचा कि क्यों ना सफाई और खाने का काम जल्दी निपटा लिया जाए, ताकि बाद में वो आराम से पार्टी के लिए तैयार हो सके। सानवी जैसे ही किचन में पहुंची और सब्जियां काटने लगी, तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो आर्यन राजवंश अंदर आया। आज वो लोअर और टी शर्ट में था, आरामदेह, मगर उसके व्यक्तित्व की ठंडक वैसी ही थी। सानवी को हल्का अचरज हुआ। आमतौर पर जब भी वो इस घर में आती, आर्यन पहले ही कहीं बाहर निकल चुका होता था, मगर आज का दिन अलग था। आर्यन ने बिना किसी भूमिका के सीधा कहा, तुम खाना मत बनाओ, वैसे भी मैं आज शाम का खाना घर पर नहीं खाने वाला। सानवी ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई, तो ठीक है, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। लेकिन आर्यन की आंखों में जैसे कोई और कहानी लिखी थी। उसने हल्की सी भौहें चढ़ाकर कहा, नहीं, तुम कोई काम मत करो, मुझे घर में जरा सा भी शोर पसंद नहीं है। जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें दखल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज धीमी थी, मगर सख्ती साफ झलक रही थी। सच तो यही था कि आर्यन को अपने घर में किसी का होना ही पसंद नहीं था। वो तन्हाई का आदी था और शांति ही उसका सबसे बड़ा सुकून। सानवी ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी की जगह हल्की सी राहत थी। ठीक है, जैसा आप चाहें, दिल ही दिल में उसने सोचा। अच्छा ही हुआ, अब मेरे पास वक्त होगा, पार्टी से पहले मैं अपनी शेफ की क्लास भी ले सकती हूँ। उसने जल्दी जल्दी किचन समेटा और बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घर में सन्नाटा गहरा गया। आर्यन ने पल भर आंखें बंद की और तन्हाई को महसूस किया। यही उसकी दुनिया थी, खामोशी, सुकून और अपने काम में खो जाना। अपनी शेफ की क्लास खत्म करके सानवी जल्दी घर लौट आई। आज शाम उसे उस हाई क्लास पार्टी में जाना था जिसकी तैयारी वो सुबह से सोच रही थी, मगर सबसे बड़ी मुश्किल उसके सामने यही थी कि उसके पास ऐसे कपड़े नहीं थे जिन्हें पहनकर वो पार्टी में कॉन्फिडेंस के साथ जा सके। वो अलमारी के सामने खड़ी होकर एक एक ड्रेस निकालती और फिर वापस रख देती। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो मैडम? सानवी ने पलट कर देखा। उसकी रूममेट और सबसे अच्छी दोस्त कृति वहां खड़ी थी। कृति एक बुटीक पर काम करती थी और खुद भी उसने फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया हुआ था। उसका सपना अपना बुटीक खोलने का था। वो अक्सर डिजाइनिंग में बिजी रहती थी। सानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज बुटीक पर नहीं गई? कृति ने कंधे उचकाए, आज छुट्टी ली थी, वैसे तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, क्या ढूंढ रही हो? सानवी ने गहरी सांस ली, आज एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जाना है, मुझे वहां फ्रेंच ट्रांसलेटर के रूप में बुलाया गया है, लेकिन मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं जो उस पार्टी के हिसाब से हों। कृति ने तुरंत मुस्कान के साथ कहा, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मेरे पास सब है, मैं तुम्हें पार्टी के लिए परफेक्ट ड्रेस दूंगी। सानवी ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे कपड़े मैं नहीं पहन सकती, पिछली बार क्लब के लिए तुमने जो ड्रेस दी थी याद है ना, मुझे कितना अजीब लगा था। कृति हंस पड़ी, अरे डार्लिंग, मैं हर तरह के कपड़े डिजाइन करती हूँ, देख लेना, एक दिन मेरा बुटीक धूम मचाएगा। आज तुम्हें मैं तुम्हारी पार्टी के हिसाब से तैयार करूंगी, और हाँ, तुम्हारा मेकअप भी मैं ही करूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मेकअप करना आता ही नहीं है। सानवी ने हल्की हंसी दबाई, मगर मन ही मन उसे राहत मिली। कुछ ही देर में कृति अपनी अलमारी से एक खूबसूरत गाउन निकाल कर लाई। वो ऑफ वाइट कलर का था, पूरी बाजुओं वाला, मगर कंधों पर छोटे छोटे कट्स थे। उसका बैक नेक हल्का सा डीप था, लेकिन फ्रंट बिल्कुल सिंपल और एलिगेंट। पहली ही नजर में सानवी को वो गाउन पसंद आ गया। वाह, सानवी के होंठों से अनजाने ही निकल पड़ा। कृति ने उसे प्यार से गाउन पकड़ाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें पार्टी की स्टार बना दूंगी। थोड़ी देर बाद सानवी तैयार होकर आई। कृति ने ना सिर्फ उसका मेकअप किया था, बल्कि उसके लुक में ऐसा ग्रेस जोड़ दिया था कि आईने में खुद को देखकर सानवी भी मुस्कुरा उठी। अब तो तुम सचमुच प्रिंसेस लग रही हो, कृति ने छेड़ते हुए कहा। सानवी शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं पार्टी अटेंड ही नहीं कर पाती। कुछ देर बाद सानवी टैक्सी लेकर पार्टी वेन्यू पहुंच गई। वहां का माहौल बेहद रॉयल और हाई क्लास था। चारों तरफ चमकती रोशनी, महंगे डेकोरेशन और फॉर्मल ड्रेस में सजे लोग। असल में इस पार्टी का मकसद एक बहुत बड़ी डील थी। फ्रांस से आए बिजनेसमैन और उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद थे। सानवी को खास तौर पर इसलिए बुलाया गया था कि बिजनेसमैन की पत्नी बोर ना हो। उसे अंग्रेजी या हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी और सानवी को फ्रेंच आती थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उस लेडी को कंफर्टेबल महसूस कराए और उनकी बातों का ट्रांसलेशन करे। जैसे ही सानवी पार्टी में दाखिल हुई, लोगों की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गईं। उसका गाउन, उसकी सादगी भरी खूबसूरती और चेहरे की मासूमियत सब कुछ उसे सबसे अलग बना रहे थे। सानवी अब तक फ्रेंच बिजनेसमैन की पत्नी मैडम सोफी डेलाक्रुआ से बातचीत कर रही थी। लगभग 45 साल की ये लेडी बेहद एलिगेंट और सॉफ्ट नेचर की थी। उसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए सानवी उसका साथ देकर उसे पार्टी में कम्फर्टेबल कर रही थी। दोनों के बीच फ्रेंच में चल रही बातचीत से लेडी काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। इसी बीच पार्टी हॉल का दरवाजा खुला और अंदर आते ही सबकी नजरें उस ओर चली गईं। आर्यन राजवंश अपने सबसे करीबी दोस्त शिव मेहता के साथ पार्टी में एंट्री कर चुका था। सानवी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक पल को ठिठक गई। और हैरानी सिर्फ आर्यन को नहीं हुई थी, शिव मेहता भी उसे देखकर चौंक गया। उसके दिमाग में तुरंत रात का ब्लू मून क्लब याद आ गया, जहां उसने सानवी को छोटी सी ड्रेस में भीड़ के बीच बैठते देखा था। उस रात की तस्वीर उसके सामने ताजा हो गई। शिव मेहता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही वही लड़की है, ब्लू मून क्लब वाली। शिव ने उस रात की पूरी बात जो उसने देखा था आर्यन को बता दी थी। आर्यन ने हल्की भौहें उठाई और नजरें सानवी पर टिका दी, मगर इस बार हालात अलग थे। क्लब की शोरगुल वाली भीड़ से बिल्कुल उलट आज ये लड़की पार्टी की रौनक का हिस्सा थी। एक एलिगेंट गाउन में पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई थी। उसी समय फ्रेंच बिजनेसमैन मिस्टर डेलाक्रुआ आर्यन और शिव से मिलने आगे आए। उन्होंने अपनी वाइफ सोफी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी वाइफ को सिर्फ फ्रेंच आती है, इसलिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी, और आज शाम हमारे साथ में सानवी है। सानवी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए आर्यन और शिव की ओर देखा। आर्यन की नजरें कुछ पल तक उसी पर टिकी रहीं। इस लड़की में तो हर तरह का टैलेंट है, उसके मन में अनजाने ही ये ख्याल आया। कुछ देर बाद पार्टी में म्यूजिक गूंजा और डांस फ्लोर सज गया। जोड़े एक एक कर डांस करने लगे। मिस्टर डेलाक्रुआ ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उन्हें फ्लोर पर ले गए। अचानक हालात ऐसे बने कि आर्यन और सानवी दोनों को साथ डांस करना पड़ गया। सानवी थोड़ी झिझकते हुए बोली, आप? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। सिर्फ डांस है, डरने की जरूरत नहीं। म्यूजिक की धुन पर दोनों कदम से कदम मिलाने लगे। माहौल में अजीब सी नजदीकी थी। तभी आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं आपके घर में काम करती हूँ तो क्या कोई और काम नहीं कर सकती? कहते सानवी ने तुरंत नजरें उठाई। उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आर्यन ने कहा। मैं फ्रेंच ट्रांसलेटर भी हूँ और आज मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया गया है, आर्यन हल्का मुस्कुराया। मुझे पता नहीं था कि तुम में इतने टैलेंट्स छिपे हैं,
सानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। शायद आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उसके इस जवाब पर आर्यन कुछ पल चुप रह गया। उसकी नजरें अनायास ही गहराई तक उतर गईं। संगीत की रफ्तार तेज हो रही थी, मगर दोनों के बीच की खामोश बातचीत शायद शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।